आप हैं SBS हिंदी के साथ।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भारत जाने वाले हैं। अगले महीने उनकी यात्रा से पहले राजनीतिक और कूटनीतिक हलचल तेज हो गई हैं। पिछले हफ्ते दोनों देशों के रक्षा और विदेश सचिवों की मुलाकात हुई और कुछ अहम समझौतों पर बातचीत हुई। इस तरह की बातचीत 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के बाद से खूब हो रही हैं, लेकिन बहुत से विशेषज्ञ मानते हैं कि अब भी दोनों मुल्क मिलकर कुछ बहुत बड़ा हासिल नहीं कर पाए हैं। क्या कमी रह जाती है, बता रही हैं नताशा झा भास्कर। न्यूलैंड ग्लोबल में जनरल मैनेजर नताशा पॉलिसी और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं। उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों पर काफी काम किया है। नताशा जी, आपका स्वागत है।
थैंक यू विवेक।
तो नताशा, बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत जाएंगे और उसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। यहाँ के अखबारों में भी खूब लिखा जा रहा है, भारत में भी बहुत चर्चा हो रही है। क्या लगता है, बतौर एक्सपर्ट आप इस यात्रा को किस तरह देखती हैं, कुछ निकलेगा?
थैंक यू विवेक। भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों का अगर हम विश्लेषण करें तो मुझे लगता है कि हमारे इन रिश्तों की सबसे बड़ी कमी जो रही है कि एक लगातार गति और समानता, जो कंसिस्टेंसी हम कहते हैं कि मोमेंटम इस रिलेशनशिप में है कि नहीं, वो रिलेशनशिप इस रिलेशनशिप में नहीं रही है। और खासकर 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आए और खासकर एक नए अध्याय की शुरुआत हुई इस रिश्तों में, जहां पे 28 साल बाद पहली बार कोई भारत के प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और ऐसा लगा कि जैसे कि एक नई स्फूर्ति प्रदान हो गई, एक नई एनर्जी मिली है ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशन को। बहुत जो लोग लिखते रहे हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशन से, वो लगातार कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे एक इंडिया सीजन शुरू हो गया है और जहां देखें वहां ऑस्ट्रेलिया इंडिया में किस तरह से इस रिलेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है, इकोनॉमिक टर्म्स में, स्ट्रैटेजिक टर्म्स में, पोलिटिकल टर्म्स में, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे, बिजनेस लेवल पे, डायस्पोरा लेवल पे, उस सब पे बहुत हद तक अब बात हो रही है। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री जब आए और उन्होंने कैनबरा में जब पार्लियामेंट हाउस में अपने एड्रेस के दौरान एकदम साफ शब्दों में कहा कि अब ऑस्ट्रेलिया हमारे पेरिफेरल थॉट्स में नहीं है, अब हम उसे सेंटर ऑफ आवर थॉट, मिडिल में उनको ला रहे हैं, कहने का मतलब कि इंडिया एक अलग रिलेशनशिप ऑफ ऑस्ट्रेलिया को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद मैल्कम टर्नबुल गए इंडिया और हमने देखा कि पिछले साल इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी 2035 जो बहुत ही इलैबोरेट डिटेल्ड रिपोर्ट है, हर सेक्टर के ऊपर उसमें एनालिसिस की गई है, 500 पेज की है रिपोर्ट, जिसमें किन किन सेक्टर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया इंगेज कर सकता है उस पर पीटर वर्गिस की रिपोर्ट, जो फॉर्मर डीफैक्ट सेक्रेटरी हैं और ऑस्ट्रेलिया के इंडिया में हाई कमिश्नर भी रह चुके थे। तो एक मैसेज जा रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत तैयारी के साथ, हमें पता है कि हमें किस तरह के रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। तो इस विजिट में प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन जब इंडिया जाएंगे तो इससे क्या उम्मीद करनी चाहिए? सबसे पहली बात तो इसका रेसिप्रोकल रिपोर्ट ये रिलीज होगा जो एम्बेसडर अनिल वाधवा ने लिखा है, जो फॉर्मर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी रह चुके हैं, और इस रिपोर्ट में ये बताया जाएगा कि हमें इंडिया एंगेजमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ कैसा हो सकता है। तो ये भी पहली बार इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया है जहां पे किसी गवर्नमेंट के साथ, किसी कंट्री के साथ एक डिटेल्ड इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी रिपोर्ट निकाली जाए। तो ये पहले अपने आप में एक नई चीज है। दूसरी बात की रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट से हमारे पुल आउट के बाद एक तरह की निराशा बहुत सारी कंट्रीज में देखने को मिली, जबकि ये बहुत इससे बहुत चर्चा हो चुकी है कि क्या ये जस्टिफाइड था इंडिया की तरफ से कि आरसेप से पुल आउट करना। ऑस्ट्रेलिया ने खासकर ऑस्ट्रेलियन पीएम स्कॉट मॉरिसन ने खासकर ये कहा कि है ना ये डोर इज लेफ्ट ओपन फॉर इंडिया टू कम एंड ज्वाइन द आरसेप नेगोशिएशन। तो ये दूसरी अपॉर्चुनिटी है प्राइम मिनिस्टर मॉरिसन के पास कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो इतने दिनों से हैंगिंग है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में 2011 से, क्या हम उसको एक नया जीवन दे सकते हैं? क्या बायलेटरल लेवल पे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट पे अपने डिस्कशन की शुरुआत, नेगोशिएशन कर सकता है, जहां पे जो भी दिक्कतें हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो डेवलपमेंट लेवल है वो एकदम अलग है, और उसको मद्देनजर रखते हुए ऑस्ट्रेलिया की जो रिक्वायरमेंट, ऑस्ट्रेलिया एग्रीकल्चर में मार्केट एक्सेस चाहता है, इंडिया सर्विसेज में चाहता है कि प्रोफेशनल सर्विसेज में ऑस्ट्रेलियन मार्केट इंडिया के लिए खुले, इन लेवल पे ऑस्ट्रेलिया इंडिया नेगोशिएट कर सकते हैं। तो दूसरा ये कॉम्पोनेंट है। तो मेरे हिसाब से प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन की जो विजिट है वो बहुत सारे एस्पेक्ट पे फोकस कर सकती है। फर्स्ट ऑफकोर्स कि हम सीका पे बातचीत कर सकते हैं, दूसरा प्राइम मिनिस्टर मॉरिसन क्या पर्सनल कनेक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बना सकते हैं। पर्सनल डिप्लोमेसी का कंपोनेंट, क्योंकि हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो इक्वेशन है, चाहे वो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हो बेंजामिन नेतन्याहू, चाहे वो शिंजो आबे हो, उनके साथ जो उनकी पर्सनल केमिस्ट्री होती है वो भी काफी हद तक एक मोमेंटम रिलेशनशिप को देती है। तो क्या वो कॉम्पोनेंट प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ क्लिक कर सकते हैं? तो जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक रिपोजिशनिंग जो आज हम देख रहे हैं हो रही है ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच, उन सारे फैक्टर्स को देखते हुए दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर नॉट जस्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया बट ऑल्सो फॉर इंडिया कि एक नया एलिमेंट इस रिलेशनशिप में लाया जाए और इसको सस्टेन किया जाए। इट शुड नॉट बी रोलर कोस्टर राइड की आज शुरू कल खत्म, जो ये रिश्तों में स्फूर्ति जो आती रही है और जाती रही है उसको सस्टेन करने की जरूरत है एग्जीक्यूशन के साथ, इम्प्लीमेंटेशन के साथ और टेंजिबल डेडलाइंस के साथ।
आपने बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया, टेंजिबल। हो ये रहा है 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ उसके बाद से खूब बातें हुई हैं, पर जब भी कुछ टेंजिबल देखने की बात आई तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा है। बहुत एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इंडिया की ओर से वो मोमेंटम नहीं है और भारत बहुत एप्रिहेंसिव है, चाहे वो आरसेप हो, उससे पहले फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो, जब टर्नबुल गए थे वो भी बड़े उदास लौटे कि एफटीए नहीं मिला उन्हें। ठीक है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लगातार कोशिशें हुई हैं, लेकिन भारत की एप्रिहेंशंस क्या हैं जिनके कारण वो मोमेंटम दिखाई नहीं देता?
देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि भारत की एप्रिहेंशंस क्या हैं, और कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हम जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं उस देश में 60% से भी ज्यादा जो आपकी पॉपुलेशन है वो ऐसे ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है जहां पे अगर आप कोई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करते हैं तो उन सेक्टर्स पे डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे कि डेयरी सेक्टर, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल। नाउ मोर देन 60% आपका पॉपुलेशन इन सेक्टर्स पे डिपेंडेंट है। अगर हम आरसेप नेगोशिएशन की बात करें तो एक नैरेटिव चलता आ रहा है, और खासकर यूनियन ग्लोबल में जो मेरा काम है, हमारा काम है, वो प्राइमरीली इसी चीज पे भी है कि हम नैरेटिव हम किस तरह से ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इंडिया को कहा जाता है कि ओपन इकोनॉमी नहीं है, बहुत प्रोटेक्शनिस्ट है, कंट्रीज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेके बहुत ज्यादा एप्रिहेंसिव रहती है। लेकिन आप देखिए, जितनी भी कंट्रीज के साथ, खासकर आसियान के साथ हमने जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है, उन आसियान नेशंस में आउट ऑफ 15 आरसेप नेशंस हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है 13 नेशंस के साथ है। इसका मतलब यह है कि जितना बेनिफिट दूसरे कंट्रीज को उस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से हुआ उतना ही खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। तो हमें उन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स का फायदा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि हमारा कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो हमारा पॉपुलेशन उसको कंज्यूम करता है। तो हमारा एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी नहीं है, हम बनना चाहते हैं एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन ग्लोबली कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स हमने अभी तक प्रोड्यूस नहीं किए हैं। तो अगर हम अपने इन सेक्टर्स को आउटसाइड प्रोड्यूसर्स के लिए जब खोलेंगे, तो आउटसाइड प्रोडक्ट्स जब आएंगे तो कंज्यूमर्स, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को तो उससे फायदा होगा, लेकिन जो आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो सफर करेंगे, और जब वो मार्केट सफर करेगी तो इवेंचुअली इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑल्सो ऑन योर इकोनॉमी। तो इन सारे कॉम्पोनेंट्स को देख के हर कंट्री अपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट के हिसाब से ही काम करती है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो आसियान नेशंस हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है वो डेयरी सेक्टर में इंडिया का मार्केट एक्सेस आज के डेट में देख रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप सेक्टर्स को खोलना भी चाह रहे हैं, बट वी हैव टू लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि इन क्या दूसरी कंट्रीज में सफर कर दिए, क्या यहाँ पे ऐसा अग्रीमेंट हो सकता है जहाँ पे बैलेंस हो गुड्स में, सर्विसेज में और इन्वेस्टमेंट में। आरसेप नेगोशिएशन को देखा जाए या किसी भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के नेगोशिएशन को देखा जाए तो फोकस ज्यादा गुड्स पे रहता है कि कैसे हम टैरिफ हटाएं, कैसे हम दूसरे मुल्कों में अपने प्रोडक्ट्स भेज सकें, लेकिन फोकस कहाँ नहीं होता है, जहाँ पे आज इंडिया को जरूरत है वो है इन्वेस्टमेंट में। क्या हम इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रहे हैं, क्या हम सर्विसेज पे फोकस कर रहे हैं जहाँ पे इंडिया हैज अ नेचुरल एडवांटेज? और ये जो नैरेटिव है ये खासकर वेस्टर्न मीडिया में और खासकर वेस्टर्न नेशंस में इस नैरेटिव को नहीं पहुंचाया गया है, और ये बार बार ये बात आगे बढ़ाई गई है कि इंडिया इज अ वेरी प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी। और ये एप्रिहेंशन है जिनको लगातार गवर्नमेंट आज भी ये कह रही है कि वी आर रेडी फॉर डिस्कशन, हम आपसे ओपनली हम वी आर रेडी फॉर डिस्कशन, बट ऑल वी वॉन्ट इज दैट वी नीड टू एड्रेस आवर कंसर्न्स ऑल्सो, जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, जो हमारे लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं, आप उनको भी एड्रेस करिए। चाइना के साथ $60 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, और ये ट्रेड डेफिसिट $7 बिलियन था 2004 में और आज की डेट में वो $105 बिलियन है 2019 में। 2004 से 2019 में इस तरह का जंप ट्रेड डेफिसिट में, ये बहुत कहता है कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कहाँ बढ़े हैं और कितना फायदा हुआ है इंडिया को इससे।
चाइना की आपने बात की, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आ जाता है चाइना और ऑस्ट्रेलिया अक्सर खोजता हुआ पहुंचता है भारत की ओर कि उसको एक अल्टरनेटिव चाहिए, उसको एक विकल्प चाहिए, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया है चाइना पर। ये बात बार बार हो रही है कि चाइना पर डिपेंडेंस कम कर सकते हैं, कम करनी है। क्या भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए नया चीन बन सकता है?
देखिए, ये जो सवाल है ये लगातार हमने रिपोर्ट में भी देखा जो इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी रिपोर्ट में आया कि ऑस्ट्रेलिया को अपने रिस्क डाइवर्सिफाई करने हैं, एक नया मार्केट ढूंढना है और इंडिया वो मार्केट देता है, इंडिया में वो स्केल है, इंडिया में वो डिमांड है, इंडिया में वो डेमोग्राफिक्स है और खासकर जो अपॉर्चुनिटी इंडिया प्रोवाइड करता है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑस्ट्रेलिया टू कनेक्ट विद इंडिया इन दैट वे। लेकिन इस आपके सवाल को अगर मैं थोड़ा अलग तरीके से देखूं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इंडिया को दूसरा चाइना क्यों बनना है और इंडिया दूसरा चाइना नहीं बनना चाहता है। मेरे पर्सपेक्टिव में हम अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं, हमारी कहानी चाइना से बहुत अलग है। अगर हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिकल सिस्टम्स को देखें या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सिनर्जीज को देखें, हमारी और ऑस्ट्रेलिया की जितनी सिनर्जीज हैं वो सिनर्जीज ऑस्ट्रेलिया और चाइना में नहीं है। और इसी चीज को जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टोनी एबट अभी रिसेंटली जब इंडिया विजिट कर रहे थे तो उन्होंने भी इसी चीज को दोहराया कि ये हमारी पार्टनरशिप एक अलग लेवल पे, हमारी पॉलिटिकल कैपेसिटी जो है, हमारा डिप्लोमेसी का जो तरीका है, रिलेशनशिप को नर्चर करने का जो तरीका है, इट्स वेरी डिफरेंट दैन चाइना एंड दैट इज समथिंग विच वी नीड टू एक्नॉलेज बोथ फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड बोथ फॉर इंडिया। ये एक अपॉर्चुनिटी है जो ऑटोमेटिकली आ जाती है, इट कैन बी इनहेंस्ड रादर देन कंपेयरिंग आवरसेल्फ कि क्या हम दूसरे चाइना बनना चाह रहे हैं या क्या ऑस्ट्रेलिया को चाइना को छोड़ के इंडिया के साथ इंगेज करना चाहिए। क्योंकि अगर आप चाइना का इंगेजमेंट किसी भी कंट्री के साथ देखें तो एक चेकबुक डिप्लोमेसी करते हैं, वो कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करते हैं। इंडिया का अप्रोच बहुत ही हर कंट्री से एंगेजमेंट में इट हैज बीन अबाउट कैपेसिटी बिल्डिंग, इट हैज बीन अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम, इट हैज बीन अबाउट डेमोक्रेटिक पार्टनरशिप। और ये जो सिनर्जीज है जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बहुत नेचुरल है और हमारे हमारे इनहेरेंट जो एकोज हैं, जो वैल्यूज हैं, वो हमें एक स्ट्रेंथ है, एक हमारी कंपेटिटिव एडवांटेज है एक दूसरे के साथ, जो मुझे लगता है कि कहीं पर भी चाइना के साथ स्टैंड नहीं करती है, चाइना के साथ वो कंपैरिजन अपने आप में लेजिटिमेट नहीं लगता है। आई थिंक दैट इज ऑल्सो यू नो वी नीड टू बी कॉन्शियस ऑफ कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया क्या एक साथ कर सकते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि इकोनॉमिकली तो बहुत पॉसिबिलिटीज हैं ही, लेकिन स्ट्रैटेजिकली भी इंडो पैसिफिक में लेके हमने डिफेंस वाइट पेपर देखा है, हमने फॉरेन पॉलिसी वाइट पेपर देखा जो ऑस्ट्रेलिया ने निकाला अपनी तरफ से, तो इंडो पैसिफिक में एक रीजनल आर्किटेक्चर जो तैयार किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, क्वाड की बात चल रही है, क्वाड पे हम काम कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज के लगा तो बहुत कुछ है। लेकिन वही बात वहीं पर आ जाती है कि एग्जीक्यूशन को लेके इंडियन गवर्नमेंट और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट क्या एक टाइमलाइन सेट कर सकते हैं। अनिल वाधवा जी ने अपने रिपोर्ट में ये कहा है कि ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी रिपोर्ट में कि एक 6 मंथ रिव्यू बहुत जरूरी है और ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी और ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी की, और 2 साल तक हर 6 महीने इस रिपोर्ट की एनालिसिस होनी चाहिए कि कहाँ पहुंचे। मिनिस्टरियल एंगेजमेंट को लगातार बढ़ाना है और कॉन्स्टेंटली मिनिस्टर्स के साथ एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। इंडिया लिटरेट और इंडिया केपेबल, बिकॉज कल्चरल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत मिसिंग है। अगर हम कॉर्पोरेट कल्चर देखें ऑस्ट्रेलिया में, तो कॉर्पोरेट ऑस्ट्रेलिया में इंडिया को लेके जो अजम्पशंस हैं या जो प्रेजुडिस रहता है आज के डेट में, उन सारी चीज़ों को बदलना भी बहुत जरूरी है। हम एक किताब भी लेकर आ रहे हैं जो इट्स अबाउट सिंप्लीफाइंग डूइंग बिजनेस इन इंडिया, जिससे कि कैसे इंडिया के साथ आपको बिजनेस करना है। एक जैसे पेटी यू नो दैट कॉन्स्टेंटली कम्स बैक दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एंगेज इन द इंडियन मार्केट, इंडिया इज अ वेरी डिफिकल्ट मार्केट प्लेस। लेकिन इंडिया को आप मोनोलिथ मत समझिए, इंडिया इज नॉट अ मोनोलिथ, इंडिया इज अ कंट्री जो 29 स्टेट्स की बनी हुई है, हर स्टेट का अपना रहन सहन है, काम करने का तरीका अलग है, एंड इट्स अ कंट्री विच वन नीड्स टू एक्सपीरियंस एंड यू नीड टू हैव पेशेंस इन दैट कंट्री। वो अगर आप लेते हैं, वो अगर आप शो करते हैं, डेफिनेटली वी हैव सीन बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जिन्होंने बहुत आज के डेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं इंडिया में, इंडियन मार्केट में। तो ये केस स्टडीज, ये एग्जाम्पल्स, इन सब चीजों को हमें ज्यादा एक दूसरे के साथ शेयर करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि रिलेशनशिप एक नए ट्रैजेक्टरी ऑफ ग्रोथ में जाए। नहीं तो प्राइम मिनिस्टर्स का मिलना या ट्रेड मिनिस्टर्स का मिलना, देयर इज नो एंड टू इट. इट हैज टू कम डाउन टू अ लेवल वेयर वी नो दैट दिस इज व्हाट वी आर अचीविंग फ्रॉम दिस रिलेशनशिप.
चलिए, एक महीने बाद फिर हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्या हासिल हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी. बहुत बहुत शुक्रिया नताशा झा हमसे बात करने के लिए.
थैंक यू विवेक. थैंक यू.
sbs.com.au/hindi पर जाए और ऐसे अंश का आपकी भाषा में आनंद उठाए.